इस वक्त मैं आपको सिंपल सी एक टिप देती हूँ, हम सब सोचते हैं अपने ऊपर लेकर कि हमारी जिंदगी में मसाइल है, सबसे पहले क्या करें? ऑफ कोर्स वो सब है अल्लाह से मदद, हेल्प, सीख, नमाज, रोजा, हज, वस्तईन, बिस्सबरी, वस्सलात, मैं उसको इस वक्त नहीं पीछे कर सकती, वो तो एक फर्स्ट थिंग है मुसलमान का, तो बिलीफ है, वो एक अलग टॉपिक है। बट इस वक्त जस्ट लाइक हम प्रैक्टिकल टिप्स पे कर जाए, सबसे पहले कागज और कलम ले और लिखना शुरू कर, मुझे क्या क्या मसाइल है। यानी रियली रियली मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, अगर हम लिखना शुरू करते हैं ना, इफ यू विल राइट डाउन नंबर वन, नंबर टू, प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू, प्रॉब्लम थ्री, प्रॉब्लम फोर, फाइव, आप लिखना शुरू कर देना, आपका आधा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा कि आप कहेंगे सोचने में तो बड़ा लग रहा था, अब क्या लिखूं? आप लिखें, दिमाग से सोचें। और इसको एक अलग टॉपिक है कि मोस्ट ऑफ द लोग, यानी जो हम सब ह्यूमंस है ना, तो इस दुनिया में रहते हुए आम तौर पे कह लें कि 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, जिसमें एक समझे कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, एक एजुकेशनल प्रॉब्लम होता है, एक हेल्थ प्रॉब्लम होता है, एक मैरिड लाइफ प्रॉब्लम होता है, एक बच्चों का प्रॉब्लम होता है, फिर एक सर्वाइवल प्रॉब्लम है, कुछ के साइकिक प्रॉब्लम है। यानी आप देखें ना तो प्रॉब्लम्स की 11 किस्में, वो हम इस वक्त नहीं डिस्कस करते। इस वक्त ये कि बस इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, केले बैठ जाएं, बहुत अच्छी जगह पे बैठ जाएं, कागज लें और कलम लें, अपने इस ब्रेन को कागज पे लिख दें, अपने आप को सोचें, एक मसला, मेरी बात बच्चे नहीं सुनते, दूसरी बात मेरी हेल्थ वीक है, तीसरी बात है मैं किचन में काम नहीं ज्यादा देर कर सकती, चौथी बात है लाइक मेरी फ्रेंड्स में, यानी जो दुख तकलीफ परेशान आपको लगती है ना, जो आपका हर वक्त दिमाग खराब करती है। आप देखिए मेरी नजर में 100 प्रॉब्लम्स भी हो ना, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप डिप्रेस रहते हैं। अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप सैड फील करते हैं, आपको देखकर लोग कहते हैं हाय ये तो कोई रोनी सूरत है, हाय ये तो बड़ी दुखी लगती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज इससे आपकी रेजिस्टेंस और आपके अंदर मतलब सर्वाइव करने की चीज है ना, वो कम हो जाती है। आपको देखें जब हम खुश होते हैं हम कितना भाग भाग के काम करते हैं, हमें पता है लग गया शाम को हमारी 10 फ्रेंड्स ने आना खाने में जिनको खिला के हमें बड़ी खुशी होती है, तो आप देखिए फिर हमारे अंदर एक एनर्जी भरेगी और हम काम भी कर लेंगे, घर भी साफ कर लेंगे, अच्छे साफ कपड़े पहन के उनके आने पे स्माइली भी होंगे, एनर्जी होगी ना। बट अगर इसके बरक मियां सर फोन कर दें 10 मेहमान मेरी तरफ से आ रहे हैं दोस्त, तो हम कहेंगे सर कमर में तो पहले ही दर्द थी, सर में और शुरू हो गया सबके, और ऐसा होता है। यानी ये एक हमारी जिंदगी का, यानी जिस काम को करने को हमारा दिल करता है ना, हम उसमें एनर्जी फील करते हैं, उससे एनर्जी आती है बॉडी में। डेफिनेट जिस काम में आपको मजा आता है ना, आप उसमें कभी नहीं थकते। जैसे मैं अक्सर इन क्लासेस में हम बातें करते हैं ना, मैं कहती हूँ मुझे 10 घंटे की कहीं पढ़ा दें तो मैं नहीं थकती, क्योंकि मुझे पढ़ाने से एनर्जी मिल रही होती है। मुझे किसी से अगर काउंसलिंग करनी है, मुझे किसी की मदद करनी है, तो मैं 2 घंटे भी बैठ जाऊँ मैं नहीं थकती, वाई? क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा होता है। बट समटाइम मुझे कुछ ऐसे कामों पर फोर्स कर दिया जाए, मीटिंग करें, बैठे साथियों से बातें करें, मैनेजमेंट की, तो मैं उसमें बोर हो जाती हूँ, मुझे उसमें मजा नहीं आता, लेकिन मुझे करना होता है बेशक। तो लिखे सबसे पहली चीज, राइट डाउन। ये बच्चे भी बैठे ना, इनके भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि अब इस दुनिया में इस बच्चों के भी बड़े प्रॉब्लम हैं,
इनके ज्यादा प्रॉब्लम है।
हम जब आपकी उम्र के थे हमें तो कोई मसला ही नहीं था, हमें तो खेलना था, लुट्टी थी, कोकला छुपाकी थी और इधर से उधर भागते, तो अब छोटे छोटे बच्चों पे बोझ है। लिखे राइट डाउन, राइट डाउन, मुझे साइंस का सबक याद नहीं होता, मुझे फला नहीं होता, सब कुछ लिखे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप आप कर चुके, हर एक अपने लेवल पे लेके लिखे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। अब इसके बाद आप क्या करें कि वो सारे जो प्रॉब्लम्स आपने लिखे है ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, डिवाइड देम इन 3 पार्ट्स। कैसे? नंबर 1, वो प्रॉब्लम्स जो आप खुद हल कर सकती हैं, डायरेक्ट आपका अपना इन्फ्लुएंस है। मतलब आपकी नींद बहुत है, आप बस सोती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, हो सकती है ना, तो आपने ये प्रॉब्लम खुद ही हल करनी है कि मुझे कैसे अपनी नींद कम करनी है, या मैं रात देर तक जागती हूँ मिसाल है, या मैं दिन में जल्दी नहीं उठती है, व्हाटएवर। यानी छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम उन सारों में से एक लिस्ट में डाल दें जो आप खुद हल कर सकती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। सेकंड लेवल के वो प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप कर तो सकती हैं बट किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, मतलब घर का माहौल वैसा बनाना पड़ेगा, बच्चे भी कोऑपरेट करें, मियां भी करें, या बाहर से आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। पहली चीज जो सिर्फ आपके अपनी जात से मुतल्लिक है, दूसरी चीज जो करने तो आपने ही है बट उसके लिए आपको दूसरों से हेल्प लेनी पड़ेगी, असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तीसरे दर्जे के वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप कर ही नहीं सकते, वो आपके बस में नहीं। मसा आप दुनिया में कौन हुकूमत करे, जंग लगे के ना लगे, पाकिस्तान का सदर कौन बने, वजीर कौन बने, सर्दी आए ना आए, कई चीजें ऐसी है ना, बर्फ पड़े के ना पड़े, यानी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिंदगी में जिसपे सिर्फ और सिर्फ आप दुआ कर सकते हैं या आप उसके लिए कुछ बहुत अच्छी मशवरे दे सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं होते। आप जब ये सारी लिखी हुई चीजों को इन तीन हिस्सों में करेंगे ना, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आपका स्ट्रेस जो है ना 1/3 रह जाएगा। जब तक लिखा नहीं होता ना बहुत परेशानी होती है, मैंने खुद आजमाया। प्रॉब्लम को अब यूं कह लें कि बहुत काम है घर में, मिसाल है जिंदगी कैसे कुछ दिन है, आपने एक हफ्ते पर ट्रेवल करना है, अब आपको पैकिंग भी करनी है, घर भी साफ करना है, आपको पासपोर्ट भी रिन्यू कराना है, आपको टिकट भी पिक करनी है, आपको कुछ यहाँ से शॉपिंग भी करनी है, आपको वहां कहाँ जाना है उधर करे, अनयूजुअल डेज होते हैं ना, आप लोग कहते हैं समझ नहीं आती सर खुदाने को फुर्सत नहीं, हालांकि झूठ कहते हैं, आप एक मिनट में खुदा ले साथ काम कर लें, लेकिन हमारी बात बनी हुई है ना। अब उसके लिए मैं सोचती हूँ ना कि जब माइंड बहुत स्टक हो तो मैं क्या करती हूँ, कागज कलम लेके बैठती लिखती हूँ, थिंग्स टू डू, व्हाट शुड आई डू, नंबर 1, 2 सारी चीजें लिख लूंगी, फिर उसको भी इस तरह सॉर्ट आउट करें, कलर कर दें, ये चीजें ओके अर्जेंट है, ये इजी, कुछ चीजें इतनी छोटी होती है, इट टेक ओनली 10 मिनट टू डू, बट हमारे दिमाग में टिक 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 लगी रहती है, लेकिन वो 10 मिनट का काम करते नहीं, करके खत्म करें, जो छोटे छोटे काम है जो लेस टाइम टेकन है इजीली करने लगे वो करके आप देखें, वो अच्छा ये कर लिए टिक, जब वो थिंग्स टू डू को कट करते हैं ना ये हो गया, उस वक्त आपके अंदर एक ताकत आती है। मसाइल का हल में सबसे पहले आप उन मसलों को हल करें, फर्स्ट थिंग जो आपके अपने हाथ में, रियली इससे आप फील करेंगे कि आप 1/3 प्रॉब्लम से छुटकारा उठा लेंगे, और जिस दिन आपको यकीन होगा ना कि मैं अपनी जात से, और इसमें देखिए मोस्ट लाइक चीजें जो जाती होती है ना ये करेक्टर बिल्डिंग से मुतल्लिक होती है, हम टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ लोग हैं वो बाथरूम में बहुत टाइम लगाते हैं, वो अंदर जाके लेट ही जाते हैं, वो लेट नहीं होते वो लेट जाते हैं, अब क्या हो गया, अब वो टाइम उनका उधर निकल गया। कुछ लोग बहुत देर से काम शुरू करते हैं, लाइक मीन जैसे अगर 9 बजे कहीं पहुंचना था ना तो 8:30 शुरू करते हैं कहीं जाने का इरादा, तो वो फिर आधे घंटे में फिर जाहिर बात है नाश्ता भी करना है, करना है तो वो उनको फिर क्या करना है, बस आप 8:30 के बजाय 7:30 से वो काम शुरू कर दें, यानी जैसे ताखीर करना, मुलतवी करना, ये छोटी छोटी मेरी आदतें होती है, उसकी वजह से फिर हम परेशान है। आप सिर्फ वो आते हैं जो आपकी जाती है ना उसके ऊपर काम करें। उसके बाद दूसरा लेवल है जिसमें आपको दूसरों की जरूरत है, ये वो लेवल होता है जिसमें घर आता है मेरी नजर में। अब आप देखिए कि ये अगर एक घर है और अगर ये आप में से किसी सिस्टर का घर है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में अकेली नहीं रहती। आपका इशू क्या था कि आपने सुबह 9 से लेके 1 बजे तक इसको साफ सुथरा कर दिया, चमका दिया, क्लीन एवरीथिंग, हर चीज अपनी जगह पे रखी, खाना भी पकाया, जैसे 90% मेरा हाउस वाइफ करती है और हमारी पाकिस्तानी सिस्टर्स तो बहुत ही करती हैं। अब आपकी ख्वाहिश क्या कि आपका घर साफ रहे, ठीक है, क्लीन रहे, खाना भी अच्छा है, वक्त पे सब है, लेकिन जो ही 1 बजे घर में बच्चे आए वो धमा चौकड़ी और आपके घर में चीजें बिखर गई, बच्चों के बैग उधर, जूते इधर, यूनिफॉर्म उतार के उधर फेंक के, आपने खाना दिया तो खाना लेके कोई टीवी के पास आ गया, 1 घंटे बाद आपको लगता है कि ये वो घर ही नहीं है जो सुबह से मैं लगी हुई। अब ये प्रॉब्लम यू नीड टू टॉक टू योर किड्स, बैठे आराम से बच्चों, अब ये नहीं टोका टाकी रोकी है, चाहे माए कहती है सारे दिन बस्ते उठाती रहती हूँ, सारे दिन के कपड़े उठाती हूँ, तो मैं कहती हूँ देखिए सॉरी टू से बट ये कसूर बच्चे का नहीं, ये आपका कसूर है। जब आपका बच्चा आया, जब बच्चा आपका day 1 पे स्कूल गया था तो आपने कहा बेटा अच्छा स्कूल आते हैं, स्कूल से आते हैं बैग इधर रखते हैं, जूते इधर उतारते हैं, यूनिफॉर्म इधर हैंग करते हैं। अगर आप अपने इस छोटे से बच्चे को 2, 4, 6 दिन तक ये सबक सिखाते रहेंगे वो आदी हो जाएगा। माएं ये सिखाती नहीं और सिखाएं तो बच्चे मानते नहीं और माएं कहती रहती नहीं आपने नहीं उठाना। नेवर डू द थिंग जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे वो खुद ना करे, पहले दिन करके दिखाएं फिर सिखाएं, जिसने सिखा दिए उसी से उठाएं, बेटा ये किधर होना चाहिए, ये भी नहीं कहे बेटा बैग उठाओ, इससे गुस्सा आता है, इससे घर में लड़ाई झगड़े पड़ते हैं। आप उस बच्चे से बस इशारा करते बेटा बैग, बच्चा समझ जाएगा बेटा इसके आपके बैग उठाओ, तो ये हुक्म है। ये बच्चे हर इंसान को बहुत बुरा लगता है जब उसको कोई कुछ कहता, करो इस तरफ घर के छोटे छोटे मसाइल को हल कर सकते हैं रियली। और बिलीव मी के जहन मुतमइन हो तो बड़े से बड़े मसले पे आप गुस्से में नहीं आएंगे। बट एक औरत है जो सारा दिन बच्चों के साथ खपी तपी, घर में एक दो बुजुर्ग हो सकते हैं जो वो तनकीद करते हैं, हर एक के प्रॉब्लम डिफरेंट होंगे, तनकीद है बहुत गुस्से वाली है, तनकीद है। अब हुआ क्या कि शाम को 6-7 बजे हस्बैंड आए तो सारा गुस्सा सारा बवाल उन पर डल गया, सुबह से बैठी नहीं, सुबह से खाया नहीं, सुबह से लेटी नहीं, मुझे तो मरने का भी वक्त नहीं है। हालांकि मरने के लिए वक्त की कोई जरूरत नहीं है, एक मिनट लगेगा और हम चले जाएंगे। अब होता क्या है कि बाजू का जो हस्बैंड वाइफ पे बात आती है ना, उसमें फिर हमारा ताल्लुक बिगड़ने लगता है। आपको तो इस घर के प्रॉब्लम्स थे ना, कितने को होंगे इसके? अब क्या हुआ, आपको इस घर के प्रॉब्लम है, ये मे बी 2-3 बेडरूम घर होगा, एक ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग है और वस्तू है और बाथरूम है, आपकी दुनिया प्रॉब्लम्स की बस ये है। बट हो सकता है आपके हस्बैंड जो वो किसी एक कंपनी के मैनेजर है। लेट्स सी, हम मिसाल लेते हैं कि आपके हस्बैंड में से किसी के, या मेरे हस्बैंड कोई भी हमें से, वो खीवी कंपनी जो है ना उसके मैनेजर है। अब आप बताइए कि उनके प्रॉब्लम्स का दायरा कार या उसका जो एक पूरा स्कोप है वो कहाँ तक है, शहर में कितने खीवी है, राइट, उसमें से किस में क्या प्रॉब्लम है, किधर क्या मैनेज करना है। एक जगह ठीक होगा दूसरे में खराब है, हो सकता है एक जगह सब दूध खत्म हो गया तो दूसरी जगह चीनी नहीं है, तीसरी जगह की बिजली खराब होगी। अब आप सोचें कि आप इतने से घर के प्रॉब्लम से अपसेट थी और एकदम हस्बैंड आए, आपने अपना सारा एग्रेशन सारा गुस्सा उन पे निकाला बिलफर्ज, तो वो कहेंगे कि जी को मसला, आप कहेंगे है, आपने तो मुझे सारे ही खत्म कर दिया, मैं कहती इतने बड़े मसले हैं आपने, वो कहेंगे नहीं, जिन मसलों से मैं निकल के आए वो इससे बहुत बड़े मसले हैं, राइट। जब भी कभी अब आप हस्बैंड और वाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उस पे आते हैं, बिलीव मी, अल्लाह सुभान ताला ने आपके लिए जो मर्द चूज किया है ही इज द बेस्ट पर्सन, मेरे लिए जो मर्द चूज किया ना ही इज द बेस्ट पर्सन, ये यकीन दिलाएं खुद को। जिस वक्त हम इस गुस्से ग्रज और तकलीफ में जीते हैं ना, मेरी शादी अच्छे मर्द से नहीं हुई, मेरे नसीब में यही रह गया था, किसके कहने पर कर दिया, ये फलां ने रिश्ता दिखाया था, ये फलां का बदला, आप सोने जैसे मर्द के साथ भी खुश नहीं रहेंगे। मैं नहीं कहती दुनिया के सब मर्द अच्छे हैं, और मैं ये भी नहीं कहती कि सारी औरतें अच्छी हैं, ये भी नहीं कहती कि सारे मर्द बुरे हैं और सारी औरतें अच्छी हैं, और अपोजिट भी नहीं है। याद रखें कि ये अल्लाह का फैसला होता है, और आप खुद अभी कह रहे थे कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, आपके माँ बाप नहीं चूज करते, वो एक इंक्लाइनेशन, एक तवज्जो, एक रुख होता है, लेकिन पीछे से अगर जो हमारे यहाँ मारूफ बात है कि जी जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो आपको जब अपने हस्बैंड पे गुस्सा आए या आपको अपनी बीवी पे गुस्सा आए तो लिखे ये जोड़ा आसमान पे बना था, ये अल्लाह ने चूज किया था। वमिन आयात ही, कुरान कहते हैं, कुरान की आयते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि शोहर और बीवी का जो रिश्ता है ना, इसको एक अल्लाह की निशानी का है, सूरह रूम है कुरान में, तो उसमें आता है कि ये एक अल्लाह की निशानी है। यानी ये रंगों जुबानों के इख्तलाफ के बावजूद एक छत में रह जाए। दो दिन पहले एक सिस्टर थी, वो ऐसे कोई इश्यूज बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि अडल्ट्स जो बालिग लोग होते हैं, जिस तरह हम बड़े हैं इस वक्त, उन्होंने कहा कि दो बालिग रिश्ते कभी इकट्ठे नहीं रह सकते एक रिश्ते के सिवा, मसलन यानी बच्चे आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, खेल लेते हैं, करते हैं, लेकिन दो बड़े मसलन, उन्होंने कहा कि माँ बेटी, बाप बेटा, भाई बहन, बहन बहन, एक खास लेवल तक इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद इनमें इख्तलाफ राय शुरू हो जाता है। क्यों? हर एक अपने आप को अकलमंद समझता है। बाप कहेगा मैं अकलमंद हूँ, बेटा कहेगा मैं हूँ, बेटी कहेगी मैं हूँ, माँ कहेगी मैं हूँ, बहन बहन से चलती है, दो दोस्त हैं तो बिल्कुल ही कुछ अरसे के बाद नहीं रहेंगी ना, लेकिन सिर्फ एक कपल कह लीजिए या एक जोड़ा बालिक लोगों का जो साथ रहता है सारी जिंदगी, और वो शोहर और बीवी है, हस्बैंड वाइफ है। फिर आप देखिए कि ये कितना यूनिक रिश्ता है कि दुनिया में भेजने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जो सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ने दिया वो हस्बैंड वाइफ का था। सूरत निसा की पहली आयत में आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और खलक मिनहा ज़ौजहा, समझ रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि पहली बात अपने दिल को यकीन दिलाएं, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज को हल करने में, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में सबसे जरूरी है कि यू शुड बी हैप्पी। सारे दरवाजे बंद, कोई सेकंड डोर नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। मैंने बाहर जगह देखे 10-10, 20-20 साल गुजर जाते हैं शादी के, उसके बावजूद भी जो सिस्टर्स हैं वो अपने हस्बैंड को कह रही होती है मेरे तो इतने रिश्ते आते थे, मेरी तो बहुत जगह बात चल रही थी, कई तो कहते हैं मेरे अभी भी आते हैं। अब आप बताइए ऐसा मर्द फिर क्या करेगा? और अगर एक मर्द के तेरे ऊपर तो मैंने रहम करके रिश्ता कर दिया, मेरी तो फलां से भी हो सकती थी, उससे भी हो सकती थी, नहीं चलेगा, क्योंकि हम सिस्टर्स हैं ना, तो आपको मेरी बातों में ज्यादा रुख मिलेगा कि शायद मैं बीवी को बुरा कह रही हूँ कि मिसाल है कि हस्बैंड की कदर करो, हस्बैंड से खुश हो, ये अल्लाह का फैसला है, हस्बैंड ऐसे होते हैं उनको खुश करो। बट अगर ब्रदर्स के साथ कोई ब्रदर बात करे तो आई एम श्योर कि वो उसको ये समझाएगा कि देखो बीवियां ऐसी होती हैं, जैसे वही बात है कि बीवियां ऐसी होती हैं, इनको सीधा नहीं कर सकते आप इनके साथ इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते, आप इनके साथ बहुत लंबी लंबी बातें नहीं कर सकते, और आप बिलीव मी इस रिश्ते पे, आज मेरा ये मौजू नहीं है लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ, जिंदगी में सबसे पहले इस चीज को समझे कि मेरा रियल प्रॉब्लम क्या है, फिर दूसरी बात यह है कि क्या ये मैं खुद हल कर सकती हूँ, तीसरी बात यह कि मैं हल दूसरों की मदद से कर सकती हूँ। चले हम ये हस्बैंड वाइफ का इशू ले लेते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे लोगों की जिंदगी में, और वो क्या है कि हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, 10-10, 20-20 साल साथ गुजारते हैं लेकिन हम एक दूसरे से खुश नहीं होते, खुश नहीं रहते, वजह क्या है, बस गुजार रहे हैं भाई, तो फिर आप छोड़ दें। देखिए सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना कि अगर आपको लग रहा है शादी हुई सबसे पहले दी बेस्ट थिंग है, आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, आप अपने बहनों भाइयों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं, बहनों जो भी हमारे यहाँ रिश्ता कल्चर है, खूब सोच समझ के रिश्ता करें, उस वक्त मोस्ट लाइकली हमारी प्रायोरिटीज क्या होती हैं, फैमिली, गुजर हो, गुजरात में रहता हो, ये तो मैं प्यार से आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि मैंने नॉर्वे आके ये 2-4 जुमले बड़े सुने हैं कि रिश्ता भी ढूंढे हमारे लिए बारी बच्ची के लिए लेकिन लड़का गुजर हो और वो रहता भी कहीं वो गुजरात या खारिया के करीब हो फिर वो बहुत अच्छा है, यानी एक सोच है, लेकिन मोस्ट लाइकली जब रिश्ते होते हैं ना तो खानदान नजर में होता है, बिरादरी होती है। एक सिस्टर से हमारी काउंसलिंग हो रही थी कुछ दिन पहले, तो जब शादी के वो उन्होंने इश्यूज खोले खाले तो मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात बता दें, फर्स्ट ओनली वन क्वेश्चन, कि आपकी शादी की बेस क्या थी। अब उसको मेरा ये सवाल ही नहीं समझ, बेस भी होती है शादी की, मैंने कहा कोई कॉमन ग्राउंड तो होती है ना, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, मिसाल है हमारा इंटरेस्ट एक है, मिसाल है एक मर्द है वो क्रिकेट खेलता है तो अपने बेटे की शादी किसी दूसरे क्रिकेट खेलने वाले की बेटी से कर देता है, या एक कोई स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं वो कहता नहीं मैं भी सही वही पढ़ रहा, मेरी ये लड़की भी पढ़ती है इससे मेरी शादी करा दी, होता है ना कोई कॉमन इंटरेस्ट, या कॉमन इंटरेस्ट ये होता है कि भाई बहनों की औलाद है, दादी कह गई थी रिश्ता करना, नानी कह गई थी करना। मोस्ट लाइकली जिस वक्त हम शादी कर रहे होते हैं ना, बिलीव में हमारी वो बेस सही नहीं होती। कुरान में जो क्राइटेरिया है, अल्लाह के नबी का क्राइटेरिया है कि 4 बातों की वजह से एक औरत के साथ निकाह होता है, उसकी दीन की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके माल की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से, कोई बुरी बात नहीं अगर ये 5 चीजें मिल जाए, बट अगर ये 5 में से 4 ना मिले, सिर्फ दीन मिल जाए फर्स्ट फॉर भी जाती थे फिर ले लो, 4 मिल जाएंगी बाद में वक्त के साथ जो भी नसीब में, वो 4 मिल जाए और दीन ना हो तो बिल्कुल ना लो, एक बिग क्रॉस है, क्योंकि दीन नहीं होगा तो मर्द खूबसूरत भी होगा, वो कमाता भी होगा, अगर वो समझ लीजिए कि खानदान भी बड़ा अच्छा है लेकिन वो गालियां देता है, वो बदतमीजी करता है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का नहीं एहसास, तो आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी, बात समझ गए ना। तो मोस्टली दुख के साथ कहना चाहिए हमारा कल्चर है कि शादियों की बेस दुरुस्त नहीं होती, या मनी देखते हैं, या बाहर के मुल्क का वीजा देखते हैं, या पढ़ा लिखा देखते हैं, या इकलौता बेटा देखते हैं, या बेटी कह दो लाखों की वारस है, खूबसूरत बड़ी है, पतली बड़ी है। बिलीव मी मैं ऐसी ऐसी सिस्टर्स को जानती हूँ अपने इर्द गिर्द में, तो 2-2, 4-4 साल से अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, क्राइटेरियन है कि दीन लेना है लेकिन खूबसूरत लड़की लेनी है। अब वो खूबसूरत तो लड़कियां शहर में बहुत सारी हैं, तो दीन वाली नहीं मिलेगी, तो दीन वाली खूबसूरत मिल जाए बड़ी मुश्किल से रिश्ता होता है, अभी रिश्ता हुए 2 महीने होते तो मसले शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं मंगनी करनी है, हम कहते हैं हमने नहीं करनी, वो कहते हैं लड़का अंगूठी बनाएगा, हम कहते हैं हमने नहीं बनानी, वो कहते हैं लड़की पर्दा नहीं करेगी, हम कहते हैं पर्दा करें, यानी बेसिकली हम सारे इस वक्त अपसेट दौर से गुजर रहे हैं, हमारा कॉन्क्रीट ठीक नहीं है, हमारा जैसे आप देखिए ना ये जिधर हम बैठे हुए हैं ये गालिबा रिक्के हाउस कहते हैं आप इसको या बिल्डिंग है, आपको इधर सारे सामने घर एक जैसे दिख रहे हैं ना, आपने जब ये घर बाय किया होगा ना तो वो ये आपसे कहेंगे कि बाहर से आप नहीं चेंज कर सकते, अंदर आप दीवार का रंग बदल लें, पेपर बदल लें, इट्स ओके, क्योंकि आप एक सिस्टम में हैं। अब इस सिस्टम में ना तो बाहर चेंज नहीं कर सकते, इस्लाम का भी एक यही मिजाज है, ओवरऑल कुछ चीजें बहुत कॉमन होनी चाहिए इंसानों में, हर दीनदार दूसरे से मुख्तलिफ है। चले हम इससे प्रैक्टिकल बात करते हैं कि बच्चा रो रहा है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। अच्छा आप देखें ना, अब इन्होंने खुद ढूंढ लिया कि इसको नींद आई हुई है, कोई कहेगा इसको खाना चाहिए, कोई कहेगा इसको माँ चाहिए ना, हर बंदा हस्बैंड है ना, अब इसको हस्बैंड बना ले, हस्बैंड रो रहा है गुस्सा कर रहा है, रीजन ढूंढे आखिर इस वक्त इसका प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त इसको क्या चाहिए, इस वक्त इसको किस चीज से बहलाया जा सकता है। यकीन करें अगर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी आ जाए ना तो हम बहुत सारी चीजों में खुद भी रिलैक्स रहें और अगलों को खुश रखें, वरना हम जान दे देते हैं। मैं कहती हूँ औरतें रुल जाती हैं, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं जी कुछ से कुछ बन जाते हैं शादी के बाद लेकिन मर्द खुश नहीं होते, वजह क्या होती है, क्योंकि हम उसको ओवरडोज दे देते हैं।
क्या सारा रोल औरत का होता है?
किसमें?
घर के बसाने में, क्या मर्द का भी तो कुछ रोल होता है?
जी किसने आपसे कहा पहली बात कि सारा औरत का होता है?
दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं।
बिल्कुल दोनों का होता है,
दोनों का होता है,
दोनों।
लेकिन अगर एक औरत सब कुछ करती रही और वो मट्टा से मस ना हो,
नहीं तो फिर इसका मतलब कि औरत गलत है। फिर औरत गलत है, कहाँ गलत है? देखिए मैं आपको सिंपल वेरी फ्रेंकली बताऊं, रिश्ता ढूंढते हुए सही ढूंढे, शादी हुई कई चीजें नहीं पता चली, गलत हो गया, शादी हुई साथ जुड़े, एक साल बहुत होता है पहला एक दूसरे के बारे में समझ के ये सही चीज खरीद आए हैं कि नहीं। मसा आप देखे ना, या आप कहते हैं एक स्वेटर ले आए, पहन के देख लिया नहीं पसंद आया, वो कहते हैं स्लिप पे वापस कर दो। 3 महीने तक की गारंटी ये लोग देते हैं ना, बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है ना। आप अगर एक अक्लमंद औरत है ना तो वो फिर समझ जाएगी कि ये बीमारी ठीक नहीं होने, फिर डोंट प्रोलोंग इट। फिर एक साल के अंदर उनको भी बता दें, आई एम गिविंग यू टाइम, यू विल गिव मी टाइम, हम एक दूसरे को समझ, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो देन आई नीड टू टेक अ बिग डिसीजन।
लेकिन औरत बेचारी अपने आप को करी जाती है, साल दो साल कितने साल गुजारी,
देखिए माँ बाप तो यही सिखाते हैं
ना, गुजारी जाओ गुजारी जाओ।
माँ बाप कहते हैं पंजाबी की कहावत है, जितने जितने वो क्या कहते हैं, माँ जब अपने किले की अच्छी लगती
है,
ये सिखाते हैं।
देखिये देखिये फिर किला ठीक हो ना,
हाँ,
तो फिर ठीक है।
तो वो अगर ना हो तो उस
फिर टेक अ बिग डिसीजन। और इस्लाम में रास्ता खोला वेल्ला ने,
तो
और उसके भी तरीके हैं। देखिए अगर औरतों को बच्चियों को हम इस तरह से ट्रेन कर देना, अगर उनके अंदर वो सारी खूबियां जो एक अच्छी बीवी एक अच्छी औरत की है वो डाल दें, समझदार भी हो साथ, तो वो गलत मर्द के साथ ज्यादा देर रह ही नहीं सकती। गलत मर्द के साथ जो औरतें रहती है ना उनमें खुद भी कोई कमजोरियां होती हैं, वीक पॉइंट्स होते हो, कहते हैं चल चुप कर जाओ, इसलिए इतनी इसने हमारी ये भी तो बर्दाश्त की हुई है ना, हमारे किरदार में वो पुख्तगी नहीं होती। हाँ ये जुमला जो है ना कि बस चुप करके बैठे ही जाना रहते रहना, हदीस में आता है कि जालिम की और मजलूम दोनों की मदद करो। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम की मदद तो हमें समझ आती है, सब जानते हैं मजलूम की मदद कहती, तो जालिम की हम कैसे मदद करें? तो आपने कहा कि उसका हाथ थाम के, अगर वो जुल्म करने लगे तो उसको रोक लो, कि देखो आज किए कल ना करना, मैं नहीं सुनूंगी। एक गाली देता है मर्द औरत के ऊपर, गाली देना बेकार चीज की, ये जुल्म है, ठीक है ना। आप बात ने गाली सुन ली है, इस वक्त चुप कर जाए, आगे से आप बोलेंगी तो आप चार और सुनेंगी, खामोश रहे। उसके बाद कमरे में बैठे, एक बड़ा अच्छा सा लव लेटर लिखे अपने शोहर को, रियली आई एम गिविंग यू, ये को मैं आपको फैंटेसी नहीं दिखा रही, रियलिटी है। खत लिख दें, मैसेज छोड़ दें कि आज मैंने गाली सुन ली है, आज के बाद नहीं सुनूंगी, सो प्लीज बी केयरफुल इन फ्यूचर। और वो खत आप उनके चाहे मैसेज में भेज दें, ईमेल में भेज दें, उनको लेटर दे दें, और अपने रवैये से कुछ गलत ना दिखाएं। उसको अंदर खाते पता लग जाएगा ये अब नहीं सुनेगी। सेकेंड दूसरे तीसरे चौथे दिन पांचवे दिन हफ्ते बाद फिर गाली दे दी उसने, तो फिर आप उसके फिर लिखे ये सेकंड नोटिस भेजे मैंने आपको, आज के बाद मैं आपकी गलत गाली नहीं सुनूंगी, और तीन चांस है उसके पास। मैं कहती हूँ फिर जुर्रत तो लेना, हमारा हाल जाके हम खाब खूब के बाद चलो रहने दो फिर कोई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी बेटियों की शादियां करो ना तो मुत्तकी से करो, क्यों करो? अब ये बड़ा अहम जुमला है, अगर वो उसे खुश नहीं रखेगा ना तो उस पर जुल्म भी नहीं करेगा। खुश रखने से मराज उसे लाड नहीं देखेगा, उसको फूल नहीं ला के देगा, उसको होटलों में खाने नहीं खिलाएगा, वो वैलेंटाइन पे फूल नहीं देगा, उसके एनिवर्सरी का केक नहीं काटेगा, जो लोगों के जिम्मे पुनपंच है, लेकिन कम से कम उस पर जुल्म नहीं करेगा। तो किसी मर्द का ये कहना या एक धोंस हांदली में कि तुझे तलाक दे दूंगा जबकि बीवी का कसूर ना हो तो उसको शौक पूरा करने देना चाहिए, फिर जुरत लाए। देखिए ये बात मेरी आपको नहीं समझ आएगी अभी, बट हमारे पेरेंट्स और हमारा माशरा सारा जुरत नहीं सिखाता लड़की को, जुरत सिखाएगा ना तो तलाके नहीं होंगी, क्योंकि उनको समझ आ जाएगी
नहीं आज कह रहे हो देनी है।
और लेकिन आगे से बोलना नहीं, ये जो मैंने आपको कहा ना लिख के देना, मैंने ये नहीं कहा बोले आज गाली दी है दूसरी दिन, ये बोलना नहीं आगे से। खाना उस दिन पहले से भी अच्छा बना,
चुपकी मारो,
घर अपना अच्छा और भी रखें, चेहरे पे स्माइल और भी रखें, लेकिन वो बात भूलने ना दें अगले को। और कभी अच्छे लम्हे में, कभी शोहर बीवी का अच्छा वक्त भी तो आता है ना, कभी एक दूसरे से बैठे बात करें, उस वक्त कहते देखे आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है, मुझे आपकी बड़ी इज्जत है, बट जिस वक्त आप गाली देते हैं मुझे उस वक्त आप अच्छे नहीं लगते। मेरे जहन में हस्बैंड का जो स्टैंडर्ड है ना इट्स बिलो दैट, तो प्लीज बी केयरफुल। मैं आपकी इज्जत करना चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड बिलो माई लेवल हो के वो गालियां देता है। गालियां देने वाले हस्बैंड से मैं प्यार नहीं कर सकती। और ये जुमले बोलने स्माइल से, चीनी में डाल के, मिठास के साथ, हमारा प्रॉब्लम क्यों बढ़ता है? अब ये सोच ले प्रॉब्लम से बढ़ते क्यों है? जलती पे तेल, एक बोली तो हमने दो बोली, उस वक्त सुन जाए चुप करके बैठे थे कि इस पे बीसियों लेक्चर्स हैं, मैं आज कहता हम बातें करेंगे, लेकिन इस पे अल्हम्दुलिल्लाह घरों में झगड़े क्यों होते हैं वो ऑडियो मौजूद है। फिर इसके अंदर हमारा एक टॉपिक है पूरा निकाह ए टू जी, शादी के बाद के कई इश्यूज, झगड़े, मसाइल, आप जाइए इसको सुनिए, आपको इंशाल्लाह डे टू डे चीजें पता लगती हैं। और सारी चीजों को अगर आप कंक्लूड कर देना तो जितना आप अल्लाह के साथ अपने दीन को मुतमिन करेंगे, आप अल्लाह के साथ अच्छे हैं ना तो बंदों के साथ भी अच्छे होंगे। अपने लिए करें, कुरान कहता है तुम पे जो तकलीफ मुसीबत आती है ना ये तुम्हारे किसी गुनाह की सजा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। तो मेरा बच्चा रो रहा है, ठीक है, अब मैंने सोचा ये भूखा है, मैंने बोला कि ये दुखी है, इसकी नैपी चेंज करनी है। एक मुसलमान माँ क्या सोचती है, मेरा कौन सा गुनाह कि इसको ये बच्चा रो रहा है। फिर आप सोचे शायद मैंने अपनी माँ को सताया था, शायद मैंने आज फजर नहीं पढ़ी, शायद आज मैंने झूठ बोल दिया, शायद आज मैंने कोई बेकार चीज देख ली है, उसकी वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। ये जो बुक कह रही है ना पढ़ेंगे आप तो आपको खुद समझ आएगी, उसमें ये सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। एक तरफ से हम अल्लाह के किसी हक में कमी कर रहे होते हैं, अल्लाह किसी बंदे को हमारे पे सवार कर देता है। मैं इसकी मिसाल देती हूँ, उस बुक में मैंने दो तीन दफा डिफरेंट तरह दी है। मिसाल है कि कोई स्वीडन रहता है, आपको फोन करता है, आप दूर पार से जानते हैं, आपको कहते हैं जी मुझे 10,000 करोन उधार चाहिए, बहुत बड़ी मुश्किल है, मजबूरी है, दे दो। आप कहते हैं चले पुराने जानने वाले हैं, दे देते हैं, मजबूरी होगी, आप उनको बैंक से ट्रांसफर कर देते हैं, फिर कब देंगे, ये अगले महीने की तनख्वाह आएगी तो दे देंगे, इट्स ओके। अगले महीने आप इंतजार करते हैं, नहीं आता, 2-4 दिन बाद आप मैसेज करते हैं, वो यार वो ये हो गया, वो अगले महीने दे दूंगा। 1-2-3 महीना आप देखते हैं, फिर आपको समझ आता है कि कोई गड़बड़ है, ये देना नहीं चाह रहे। आप कहते हैं मियां को चले स्वीडन चलते हैं, आप एक दिन स्वीडन जाते हैं कि चलो हम जाके मिल के आते हैं। अब जब उसको पता चला आप आए, वो आपके सामने नहीं आए, राइट, आप फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाते, अब आप क्या करेंगे भला, अक्लमंद लोग क्या करेंगे। स्वीडन में रहने वाले अपने किसी दूसरे जानने वाले को बोलेंगे, देखें आप तो शहर में रहते हैं ना, तो ये फुलां बंदे का मरसा जी मामला हमारे सामने नहीं आ रहा, आप जरा आते जाते उससे पूछते रहे, और उसको आप कह देते हैं कि अब आपसे ये पैसे वसूल करेगा। अब क्या हुआ, आप तो वापस आ गए नॉर्वे, वो स्वीडन में रहने वाला उसको जाके भी पूछ सकता है, उसके सर पे भी सवार हो सकता है, कर सकता है ना। अब ये एक मिसाल है, आप इसको अपने ऊपर लें, मेरा अल्लाह से कोई मामला बिगड़ा हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होती, एक सेकंड में मेरे से निकलवा सकता है, बट अल्लाह मेरे सर पे किसी दूसरे को मुसल्लत कर देता है, जो तुम इससे मेरा हक ले लो, समझ आई। तो असल बात है कि हमें खुद को अल्लाह के करीब करना है। आप देखे ना कि ये कुरान है, अभी आप माशाल्लाह स्कूल गए थे, आपने रौनक देखी ना, हर क्लासरूम में कोई ना कोई कुरान की क्लास चल रही थी, बच्चों को बच्चों का कुरान, बड़ों का, लड़कों का, बच्चियों का, पूरी फैमिली को अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो आप सैटरडे क्लासेस में कर सकते हैं। वजह क्या है कि इसमें कुरान बंदे के अंदर आता है, बंदे को सिखाता है। आपने सबीलुल खुदा में सूरह सबा शुरू की आज, आप पता नहीं लेट आए होंगे, नहीं सुनी, हर सबक में आपको मैसेज मिलता है। हमारे जो स्टूडेंट्स है ये गवाह, ये है, आप बाद में बताएं, वो आयशा देखें, इसके गोद में 1-2 महीने का बच्चा है, ये खुद गवाही देते हैं कि हम घर से 10 मसले सोच के गए होते हैं, उस दिन की तफसीर में उन्हीं 10 मसलों का जवाब होता है। हर बंदे को ये लगता है ये मेरी बातें हैं, क्योंकि देखिए कुरान अल्लाह की किताब है। असल हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, मुझे ऐसे लगता है कि हमने दुनिया में पैदा होने के बाद अपना अल्लाह ताला के साथ जो एक बड़ा क्लोज ताल्लुक होना था ना, वो नहीं डेवलप किया, और अब अपने बच्चों में भी यही हो रहा है। हम उनको कहते हैं दुआएं पढ़ो, नमाज पढ़ो, झूठ ना बोलो, माँ बाप से अच्छे बनो, बट हम उनको अल्लाह के साथ वो जोड़ने वाला हक नहीं अदा कर पाते। बिलीव मी, मैं चाहती हूँ हम प्रॉब्लम सोल्यूशन से अलग ना हो। आप अपने सारे मसले मसाइल लिख के आप अपने आप को 1 महीना दें, आज की डेट लिख लें, आज 1 अप्रैल है, आप 1 मई तक का अपने आप को टाइम दें, आप इस 1 महीने को वैसे गुजारे जैसे एक आइडियल मुस्लिम को गुजारने की जरूरत है। टाइम दें इस किताब को, ये किताब बेसिकली देखिए नमाजें भी तभी जिंदा होती हैं जब हमें उसका तर्जुमा समझ आ रहा होता है। हमारा रोजे अब आने ना आगे, हम रोजा रखेंगे तो उसमें से तकवा कब मिलना है, जब हमें रोजे की रूह समझ आएगी। ये कुरान जो अल्लाह ने हमारी जिंदगी में ला रखा है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर मसले का हल आपको इस कुरान में से मिलता है। आप कहते हैं वजीफा बता दें, कोई आयत में कितनी दफा पढ़ूं, मैं कैसे करूं, कुछ नहीं फायदा होना आपको। आप उस आयत का थीम समझे, मकसद समझे। आप एक दफा कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत क्रीमा कहते हैं ना इसको, एक दफा बंदा इसके तर्जुमे पे गौर कर लेना कि अल्लाह तेरे सिवा कोई भी नहीं है, ला इलाहा इल्ला अंता سبحانہ کا تو پاک ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، انی کنتو من الظالمین، بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرتی ہوں. جب آپ یہ کہیں نا میں ظالم ہوں تو رو پڑے، اپنے گناہوں کی لسٹیں لمبی کر لیں، دیکھیں ایک دفعہ دل سے کہہ لیں، ایک دفعہ آپ اس کو اس شعور سے لیں کہ اللہ یہ جو میرے پہ تکلیف آئی ہے ظالم میں ہوں، جو تو نے مجھے دنیا میں پاک کیا تاکہ مجھے آخرت میں جنت ملے. اب آپ اس کے بدلے میں اپنی ایک دوست کو تسبیح دیں اور کہ 500 دفعہ پڑھ کے لے کے آؤ، دوست کیا کہہ رہی ہوگی. اب دیکھیں نا مثال ہے کہ میں اپنی دوست کو کہتی ہوں میرے اوپر مسئلے آئے ہیں، ذرا تم مجھے آیت کریمہ پڑھ دو، وہ کیا پڑھے گی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوست کیا کہہ رہی ہے اللہ کو؟ کہ اللہ تو پاک ہے ظالم میں ہوں. اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں اور میری دوست ظالم ہے. دوست کی طرح سے پڑھ رہی ہے نا. انی کنت کو اگر آپ عربی میں کر لے تو انا ہا ظالمت، اللہ وہ بڑی ظالم ہے. ایسے تو کوئی نہیں پڑھتا. اب یہ ایک طریقہ شروع کر لیں.
اپنے لیے پڑھا نا.
ہاں جی، جو پڑھ کے
یونس علیہ السلام نے اپنے لیے پڑھا.
اپنے لیے پڑھا.
اچھا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو 3000 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، تو پھر یہ
دیکھیں 100 حدیث میں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتے ہیں نا، گن کے جس کو پڑھتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن، 100 سے زائد کبھی نہیں پڑھا. اس کے بعد کھلا پڑھنا ہوتا ہے. صبح شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اوراد ہیں، درود شریف ہے. میں نے کل ہی یہ جملہ بولا کہ آج میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ سنا. کہنے لگی ہم کہیں گئے تھے تو پھر وہاں پہ تو گیلی تسبیحیں تھیں نا، تو میں نے کہا یہ گیلی تسبیحیں کیا ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے گھر گئے تھے تو وہاں انہوں نے آیت کریمہ پڑھانا تھا، پیالوں میں پانی ڈپ کر کے پانی کے اندر بھیگی ہوئی تسبیحیں ہمیں دی. شرط یہ تھی پڑھتے ہوئے آیت کریمہ کہ تسبیح پانی سے نہیں نکالنی. کیوں؟ کہتی یہ بڑا گرم کلمہ ہوتا. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ کہیں قرآن میں ہونا چاہیے نا؟ سخت پتہ کیوں ہے؟ کہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. اگر اس میں گن کے پڑھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے قرآن میں، سورۃ انبیاء میں، کہ جو جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ساری بات کو ہم یہاں ریپ اپ کرتے ہیں. ہم خود کو اب ٹائم دیں، اپنے حق پہچان لیں. قرآن میں آپ کو اپنے حق بھی پتہ چل جاتے ہیں، لمٹس بھی پتہ چلتی ہیں کہ آپ ایز اے وائف آپ کی کیا لمٹس ہیں، اور ایز اے ہسبینڈ میرے ہسبینڈ کی لمٹس ہیں، وہ کس حد تک مجھے اپریس کر سکتے ہیں اور میں کس حد تک ان کا ظلم سہ سکتی ہوں. کئی لوگ ظلم سہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مظلوم ہے، اور کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں، وہ صبر نہیں ہوتا. آپ کو جو فیصلہ 10 سال بعد لینا ہے، اگر آپ وہ آج لے لیتے ہیں نا تو آپ اگلے بندے کو 10 سال ظلم کرنے سے روک لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک بہت کین آبزرویشن کی ضرورت ہے. بعض وہ کہتے ہیں نا چھری میں اگر آپ دیکھیں سیب کاٹتے کاٹتے آپ انگلی کاٹ لیں گے، نقصان ہوگا نا اپنا. چھری ادھر کی ادھر لگے گی تو آپ کی وہ اپنی انگلی کو کاٹ دے گی. تو بعض دفعہ پرابلم ہمارے مسئلے کب بڑھتے ہیں؟ اب میں جو آپ کو طریقے بتائیں، اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے نا تو سب کے گھر میں کل لڑائی ہو رہی ہوگی. نہیں کرنا، ایزی ہینڈل وتھ کیئر. پہلے اپنی زبان کا ٹور دیکھیں، باقی چیزوں کو دیکھیں، اور آپ اپنے مسائل کو اس طرح اینگل کریں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ میں اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتی ہوں. اللہ سے تعلق، 5 وقت کی نماز، اللہ کی تائید شامل ہو جائے گی ہر کام میں. صبح و شام کی دعائیں پڑھیں، اس میں حفاظت ہے، اس میں پریشانیوں سے نجات ہے. غم دکھ کی دعائیں، ہزاروں دعائیں آپ کو اپنے پاس اتھینٹک مل سکتی ہیں. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو قریب کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا.
ہم بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو جی
جی،
تو اس کا کیا سلوشن؟ ہم کہتے رہتے ہیں نماز پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ایسا نہ ہو جائے گا.
دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اب یہ سارے ہی ہم غور سے سنتے ہیں.
میں بڑا پریشان ہوتی ہوں کہ
بچے نہیں پڑھتے،
نماز کی طرف آتے ہی نہیں بچے.
میں آپ سے یہ ایک سوال کروں، اور میرے اس سوال پہ آپ کے بچے بڑے خوش ہوں گے. آج موج ہونے لگی ہے. دیکھیں آپ کے بچیاں نا یہ بیٹھی ہوئی ماشاء اللہ، ہم انہیں کی بات، ان کی دوستیں ہیں کوئی؟ ہے نا، اسکول میں، ادھر بھی، ادھر کی بھی ہوں گی نا، کوئی نہ کوئی دوستی ہوتی ہے. کیا آپ کو کبھی کہنا پڑتا ہے ان کو کہ اپنی دوست سے باتیں کرو؟ خود ہی کرتی ہیں نا. وجہ دوستی ہے. یہ اسکول میں بھی ان سے باتیں کرتی ہوں گی، پھر اس کے بعد یہ آپ کو کہتی ہوں گی شام کو بھی امی میں اپنی دوست کے گھر چلی جاؤں. مثال دے رہی ہے نا، جہاں دوستی ہوتی ہے نا وہاں ملنے کو بھی دل کرتا ہے، وہاں باتیں بھی کرنے کو دل کرتا ہے، ان کے ساتھ بندہ اپنا دکھ سکھ بھی کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا بچوں کو نماز پڑھو، گناہ ہوگا جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کی بجائے ان کو اللہ کی محبت ہے. بیٹا یہ پانی کس نے دیا، بیٹا یہ سیب کس نے دیا، یہ بادل کس نے بنائے، یہ ہوا کس نے دی، ان کو اللہ سے باتیں کرنا ماں بچپن سے سکھا دیتی ہے. اور نماز کیا ہے؟ دن میں 5 دفعہ ہم اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں، تھینک یو اللہ، تھک شکریہ اللہ جی آپ نے مجھے کھانا دیا، آپ نے دیا جی. تو یہ جب اللہ سے محبت نہیں ہوتی نا تو پھر نماز بوجھ لگتی ہے. मोहब्बत होगी तो ये अच्छा मैं थोड़ी देर बातें ना करूँ, जैसे थोड़ी देर मैसेज क्या करते थे क्या हुआ, अच्छा फोन ना कर लूँ, नहीं अच्छा बहन को फोन ना कर लूँ, कहते हैं ना हम लोग। तो अल्लाह से मोहब्बत पैदा, और वो मोहब्बत कैसे आएगी, अल्लाह के नामों पे गौर और अल्लाह की किताब, उसका तरीका सिंपल इजी तरीका है किताब से जोड़ो।
बच्चे हैं इनको लैंग्वेज नहीं आती, उर्दू का नहीं पता है इनको कि ये खुद भी पढ़ सके, इनकी तो लैंग्वेज ही नॉर्वेज है ना, तो ये इनको सिखाना समझाना उर्दू के मतलब नहीं इनको आते,
इनको नोश क्लास में भेजे। जी माशाल्लाह हमारे पास नोश में पूरी तफसीर की क्लास होती है, अभी अभी दौरे कुरान होने वाला है, बल्कि आज आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मई के महीने के बिल्कुल शुरू से ही हमारे रमजान के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। कुछ क्लासेस में हम वीकडेज में करते हैं, कुछ में पूरा हफ्ता करेंगे, वीकेंड पे खाली कुछ करेंगे, तो उसमें ये होता है कि पूरे कुरान का थॉरो तर्जुमा आप सबके सामने अपने घर में जो कुरान पाक आपका है तर्जमेला वो खोल के रखते हैं, और सुनाने वाला आपको, जैसे मैं बातें कर रही हूँ मेरे हाथ में भी कुरान होगा तो आप उसमें से तर्जमे के समय पढ़ूंगी, आप अपने कुरान में से देख रहे होंगे, फिर जहाँ जहाँ जरूरत की चीज मुझे फील होगी है कि भैया जो भी आपको इसमें मुझे जरूरत है तो उसका थोड़ी सी वजाहत होती है। ये तकरीबन ढाई घंटे में बीच में एक आधे कैप के साथ ये पूरे एक सपारे का तर्जमा हम कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स भी होते हैं, उसमें ऐसे छोटे शॉर्ट रिमाइंडर्स भेजते हैं, इस वक्त भी घर से हमारे साथ काफी लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह, मैंने आती नेट आपसे लिए ना, तो इसमें ये है कि आपको हम नेट के थ्रू कुछ चीजों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन आप तो हमारे इतने करीब हैं कि हफ्ते के सातों दिन का स्केड्यूल देख ले। ये जो बातें मैं कह रही हूँ ना, ये आपको ऐसी छोटी बातें लगनी है, आपने कहना कि असल चीज ये थी जिससे हम जुड़े हैं, और वो क्या कि हमें ये कुरान समझ आने लग गए, ठीक है, ये चीज है। और याद रखे कि अल्लाह ने हर मसले का हल रखा हुआ है, हर बीमारी की भी दवा है, हर मसले का हल है। अल्लाह से ताल्लुक खुश रखें, पांच वक्त नमाज वक्त पे पढ़ें, तहारत का ख्याल रखें, अपने आप को अल्लाह से जोड़ें कि अल्लाह ताला मेरा तेरे पे यकीन है कि तू मेरे लिए जो फैसले कर सकता है वो दूसरा नहीं कोई कर सकता। जितना आप अल्लाह से करीब होते जाएंगे खुद बहुत बंदों से मामला करना भी आसान हो जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।